सब लोग अपने दोनों हाथ जोड़िए और मेरे पीछे दोहराइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। रक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब जोर से बोले पुनः, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जोर से
हरे कृष्णा।
तो आप सबका स्वागत है। आज से एक विशेष सत्र हम शुरू कर रहे हैं, विशेष सप्ताह है। कौन सा सप्ताह है? भगवद गीता का विशेष सप्ताह है। तो आप सबको भगवद गीता दी जा रही है, तो आप सब बहुत अधिक भाग्यशाली हैं और बहुत अधिक सौभाग्यवान व्यक्ति हैं। क्यों है सौभाग्यवान? क्योंकि शास्त्र ये वर्णन करते हैं कि संसार में यदि हम लोगों को थोड़ा सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो हर एक व्यक्ति एक छोटे से बच्चे से लेकर जो हॉस्पिटलाइज्ड है ओल्ड व्यक्ति, तो यहाँ छोटे से बच्चे से लेकर एक बूढ़े व्यक्ति तक हर एक व्यक्ति बहुत अधिक इस जगत में व्यस्त है। चाहे वो गृहिणी क्यों ना हो, चाहे वो बच्चा स्कूल जाने वाला क्यों ना हो, या फिर रास्ते में हम जब जाते हैं तो रेड लाइट्स में जो भिखारी भी आता है तो उसके पास भी टाइम नहीं है, वो भी अत्यधिक व्यस्त है। तो बाकी लोगों का क्या कहा जाए? तो हर एक व्यक्ति एक मैराथन में भाग ले रहा है, रनिंग मैराथन होता है ना, वैसे ही हर एक व्यक्ति अपने जीवन में दौड़ते जा रहा है। और ऐसी लंबी दौड़ है इस जीवन की जिसका कोई एंड नहीं है, और उस दौड़ में व्यक्ति किसी एक वस्तु को पकड़ने की इच्छा में दौड़ते जा रहा है। चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, युवा हो, या फिर कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, या अभी मरने वाला हो, तो हर एक व्यक्ति इस दौड़ में है। और इस दौड़ में व्यक्ति क्या करने वाला है? किसी एक चीज को पकड़ना चाहता है। तो आप सब लोग क्यों भाग्यवान हो? क्योंकि देखो, सारे संसार में लोग दौड़ रहे हैं, किसी हर कोई व्यक्ति व्यस्त है, किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन आप सबने टाइम निकाला है। किस चीज के लिए टाइम निकाला है? भगवद गीता को समझने के लिए। तो अर्जुन की बराबरी या अर्जुन का फॉलोवर वही हो सकता है जो अपने ऑफिस आवर से क्या निकालता है टाइम निकालता है। तो अर्जुन ऐसे नहीं कि अर्जुन कोई बड़ा सन्यासी थे या बहुत बड़े वैरागी थे जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए कृष्ण को इनवाइट किया और कहा चलो मुझे ना अभी बहुत टाइम ही टाइम है, थोड़ा गीता भी सुनाया करो बीच बीच में, ऐसे था अर्जुन के साथ नहीं। बल्कि अर्जुन की तो ऐसी स्थिति थी कि अर्जुन के समान इस संसार में अत्यधिक व्यस्त व्यक्ति कोई नहीं है। अर्जुन इतने बड़े पारिवारिक जिम्मेदारी उनके पास थी, इतने सारे प्रजा के सबसे बड़े भारतवर्ष के राजा थे, और इतना ही नहीं कई सारे स्किल्स अर्जुन के पास थे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी
फिर भी अर्जुन क्या करता है, अपना समय निकालता है और समय निकालकर कृष्ण के चरणों में बैठकर भगवान के इस विशेष गीत को सीखता है या इस गीत को सुनता है या इस गीत को समझता है। तो भगवत गीता का मतलब ही क्या है, भगवत मीन्स भगवान ने, गीता मीन्स गीत, मीन्स सॉन्ग या पोयम। तो भगवान कृष्ण अपने मित्र के लिए जब एक गीत गाते हैं तो वो गीत क्या बन जाता है, सारे मनुष्य समाज के लिए एक गाइड बुक बन जाता है। तो उस गाइड बुक को समझने के लिए जो व्यक्ति समय निकाल रहा है, वास्तव में वो व्यक्ति क्या है, सर्वाधिक भाग्यवान है। उस व्यक्ति की तुलना उस शेर से की गई है, लायन से की गई है, हाँ सिंह से की गई है, जो सिंह जंगल में दौड़ते हुए जाता है और जाते जाते एक स्थान में रुकता है और रुककर वो पीछे मुड़ के देखता है सिंह। तो इसको क्या कहते हैं, सिंहावलोकन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंहावलोकन। सिंह जब दौड़ता है आगे जाता है और एक स्थान में बैठकर पीछे मुड़ के जब वो देखता है तो उसे सिंहावलोकन कहा जाता है। और क्यों वो पीछे देखता है, क्योंकि वो इसलिए देखना चाहता है कि मैं अभी अपने लंबे दौड़ में कहां तक पहुंचा हूं। तो उसी प्रकार से हम सब व्यक्ति जब माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो एक रनिंग मैराथन में हम भाग ले रहे हैं, एक लंबी दौड़। एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा था, बीच में किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था, एक मिनट का था, एक मिनट में सारा लाइफ साइकिल उस व्यक्ति का दिखाया था। उसकी वो जो मदर है हॉस्पिटल में दिखाई गए थे, बच्चा जन्म लेते ही विंडो से बाहर आकाश में चला जाता है, हाँ बेड से जन्म लेते विंडो से बाहर, और जाते 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 वो युवा भी हो जाता है, बूढ़ा भी हो जाता है, और जाकर सीधा कहाँ गिरता है, कब्रस्तान में गिरता है और मर जाता है। तो मतलब हमारी गति भी वही है, हम सब लोग लंबी दौड़ में आए हैं, और यदि हम उस सिंह के भांति थोड़ा सा रुकते अपने जीवन में एक सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए, और पीछे मुड़कर देखते कि मैंने क्या जीवन जिया है उस सिंह के समान, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी मीन्स वो व्यक्ति सर्वाधिक क्या है, बुद्धिमान है। तो आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी का मतलब बुद्धिमान है, जिन्होंने अपना समय निकाला और जानने के लिए क्या हो गए, लालायित हो गए या जिज्ञासु हो गए। नहीं तो सारा संसार या संसारिक लोग जिनकी तुलना शास्त्र भेड़ से करते हैं, एक होती ना भेड़ चाल, सारा जगत एक और दौड़ रहा है, और जैसे भेड़ होते हैं, एक भेड़ आगे जा रही है तो सारे भेड़ उसके पीछे चलते जाते हैं, हाँ सर नीचे झुकाकर, उनको पता नहीं कि आगे गड्ढा आने वाला है, खतरा है, लेकिन एक दूसरे को फॉलो करते हुए सारे गड्ढे में जाकर गिरते हैं। तो उसी प्रकार की इस संसार की जो ये भेड़ चाल है उससे अलग हटकर जब व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में जानना चाहता है तो वो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण कहते हैं सर्वाधिक बुद्धिमान है। इसलिए आज हम एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ये यात्रा कितने दिनों की हमारी, सात या छह, सात दिन, जितने भी दिन चले। हाँ तो आप तो यहाँ ही रहते हैं दिन में, तो जब तक ये यात्रा कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे हम। तो ये यात्रा की शुरुआती है, और यात्रा तो ऐसे नहीं है कि ये यात्रा हम पहली बार कर रहे हैं। यात्रा तो लोग कहते हम मंगल में पहुंच गए हैं, चंद्रमा में चले गए हैं, इतनी सब जगह की यात्रा करने के बावजूद भी व्यक्ति कभी अपने अंदर अपने आप को झांक नहीं पाया, अपने आप को समझ नहीं पाया, अपने जीवन के रियल जो वास्तविक लक्ष्य है, गोल है, उसको जान नहीं पाया। हाँ तो इसलिए ये जो यात्रा है इसको कहते हैं आत्मान्वेषण की यात्रा, आत्मा का अन्वेषण करना। ये आत्मा का क्या, ये एक प्रकार का प्रवास है जिसको हमें जानना होगा, और किसके माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे, भगवद गीता की शिक्षाओं के माध्यम से। इसलिए इस यात्रा में भाग लेने की कुछ योग्यताएं होती हैं। जैसे कई सारी यात्राओं में आप जाते हो, टूर्स में जाते हो, तो कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन आपसे आकांक्षा रखते हैं, जैसे अमरनाथ की यात्रा में जाते हो तो आपसे क्या रखा जाता है, कुछ ना कुछ आकांक्षा रखती है, रखा जाता है, कुछ योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तब आप उस टूर में या यात्रा में भाग ले सकते हो। तो इस यात्रा में भाग लेने की क्या योग्यताएं हो सकती हैं आप में से कोई? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको क्या करना है बोलना है, माता जी बताइए।
श्रद्धा होनी चाहिए भगवान,
श्रद्धा होनी चाहिए इस यात्रा में भाग लेने के लिए। और कोई प्रबोध? लवले होना चाहिए, माता जी सारा बोल रहे हैं यहाँ यहाँ कुछ और प्रबोध। इस यात्रा में भाग लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है? श्रवणम की क्षमता,
जिज्ञासा
होनी चाहिए। यहाँ यहाँ खाली है सारा रेगिस्तान। भावना होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तपस्या, पेड़ के नीचे आकर बैठकर तपस्या, वो भी लंच ब्रेक में, और
विश्वास मनोबल।
तो कई सारी योग्यताएं हैं, लेकिन तीन प्रमुख योग्यता हैं। सबसे पहले तो ये योग्यता है कि भगवद गीता की शिक्षाओं को उचित रूप से समझने के लिए हमारा जो हृदय है वो क्या होना चाहिए? बहुत मजबूत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मजबूत हृदय होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जो धारणा है, आध्यात्मिक जीवन है, वो हम अपने मनोकल्पना के आधार पर सोचने लगते हैं कि भगवत भक्ति ऐसी है, भगवान इस प्रकार से, धार्मिक जीवन इस प्रकार से है। और जब हम भगवत गीता की शिक्षाओं को समझते हैं तो क्या होता है कि हमारी ये जो धारणाएं हैं, मनोकल्पित भावनाएं हैं, ये टूटने लगती हैं जब भगवत गीता की रियलिटी जब हमारे सामने आती है। और कभी कभी कड़वा सच भी हमें क्या करना होता है? सुनना पड़ता है। तो इसलिए जब कड़वा सच सुनना होता है तो उसके लिए हमें हृदय को भी बहुत प्रबल बनाना होगा, मजबूत हृदय रखना होगा जब हम इस यात्रा में भाग लेते हैं। और दूसरी चीज क्या है? दूसरा योग्यता है कि हमारा दिमाग खुला होना चाहिए, ओपन माइंड जिसको कहते हैं ना। हाँ, ये व्यक्ति बड़ा ओपन माइंड है, स्वीकार करता है। तो उसी प्रकार से इस यात्रा में भाग लेने के लिए दूसरी योग्यता है कि हमारा दिमाग थोड़ा खुले दिमाग के हम होने चाहिए, कोई संकुचित भावना के हम नहीं होने चाहिए, या बहुत छोटी भावना हमें धारण नहीं करनी चाहिए। तो जब हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो कई सारे जो संदेह है, संशय है, वो सारे परास्त होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो हम फिर उसको स्वीकार करने के लिए योग्य हो जाने चाहिए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या है? ध्यान पूर्वक सुनना। कैसे सुनना? ध्यान पूर्वक सुनना। तो ध्यान पूर्वक सुनना इसलिए है क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। यहाँ लंच आवर भी छोटा है और लाइफ में भी हमारे पास समय क्या है? कम है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जैसे ये सूर्य उदित होता है हर रोज और एक दिन अस्त में चला जाता है, तो हर एक व्यक्ति के आयु को वो कम करते रहता है। क्या करता है? कम करता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के बारे में जानने का प्रयास करता है, अपने जीवन के प्रमुख लक्ष्य के बारे में समझने का प्रयास करता है, भगवद गीता की शिक्षाओं को सीखता है, तो उस व्यक्ति की आयु ये हरण नहीं करता। कौन नहीं हरण करता? सूर्य। सूर्य ये काल का प्रतीक है और सूर्य ये क्या करता है? सबकी आयु, कोई उसमें एक्सेप्शन नहीं है, चाहे वो कोई कीट हो, पतंग हो, या फिर पशु हो, वृक्ष आदि हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, कोई भी चराचर हो, हर एक व्यक्ति की आयु को क्या करता है? वो कम करते रहता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं उद्यान अस्तम चयन असो आयु हरंती वै पुंसा, आयु को हरण कर लेता है। और हम सब लोग लगे हुए हैं अपनी आयु को गंभीरता से पकड़ के रखने के लिए। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण जो योग्यताएं हैं, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें ये जो चर्चा है भगवद गीता की, इसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। तो भगवद गीता हमें अपने जीवन में वास्तविक रूप में झांक कर देखने को सिखाती है, और भगवद गीता के सहायता से हम अपने जीवन के जो उचित मूल्य हैं उसको समझ सकते हैं। या उसको अनुभव कर सकते हैं। इसलिए भगवद गीता को क्या कहा गया है, ज्ञान का सार कहा गया है। हाँ, भगवद गीता तो ज्ञान का सागर है। हम सब इस संसार के भौतिक सागर में, भव सागर में डूबे हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कोई व्यक्ति भगवद गीता रूपी सागर में डूबता है तो उसका उद्धार निश्चित है। हम सब लोग इस भौतिक जगत के भव सागर में डूबे हैं, तो चॉइस हमारी है, या भव सागर में गोते लगाने हैं या कौन से सागर में गोते लगाने हैं। भगवद गीता का जो ज्ञान का सागर है, आध्यात्मिक ज्ञान का सागर है, और सारा जो वैदिक ज्ञान है उसका ये सार है। क्या है? सार है। तो हम प्रयास करेंगे इन 7 दिनों में जितना हो सके भगवद गीता का जो मूलभूत शिक्षाएं हैं, भगवद गीता का जो सार है उसको प्रस्तुत करने का। तो भगवान, हाँ, जो ये भगवद गीता है, भगवद गीता यथारूप आप सबके पास है। तो भगवद गीता यथारूप में हम देखते हैं कि भगवद गीता किस प्रकार से है, सारे ग्रंथों का सार है। आप अपना पेज नंबर 27 निकाल सकते हैं। हाँ, तो पेज नंबर 27 में सबके पास है भगवद गीता। तो भगवद गीता सारे ज्ञानों का आधार और सारे ज्ञान का क्या है, सार है। तो भगवद गीता के विशेषता क्या है, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो असीम मात्रा में है। अनेक वेद उपनिषद आदि हैं, वेदांत सूत्र आदि हैं, बहुत सारे पुराण हैं, महाभारत है, रामायण है, तंत्र शास्त्र है, स्मृति शास्त्र है, संहिताएं हैं, लेकिन इन सारे शास्त्रों का जो सार है वो भगवद गीता है। जो ज्ञान सारे शास्त्रों में अवेलेबल है वो सारा ज्ञान भगवद गीता में निहित है, और ऐसी भी बातें भगवद गीता में है जो बाकी ग्रंथों में हमें जानने को या पढ़ने को या सुनने को नहीं मिलती है। इसी कारण से भगवद गीता की सर्वश्रेष्ठता है। इसी कारण से ये जो भगवद गीता का महात्म्य है, जिसमें पेज नंबर 27 में सबसे पहला ऊपर श्लोक है, क्या श्लोक है, सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। तो ये जो गीतोपनिषद, उपनिषद कितने हैं, 108 उपनिषद हैं। तो ये उपनिषदों का उद्देश्य यही है। उपनिषदों का क्या है कि वहां उपनिषदों में क्वेश्चन और आंसर्स हैं, कोई गुरु और शिष्य का संवाद आदि है जिसके द्वारा गुरु से जो शिष्य है वो सीखता है। उपनिषद, निषद मीन्स निकट बैठना, उप मीन्स नजदीक बैठना, और गुरु के द्वारा सीखना। तो उसी प्रकार से ये जो भगवद गीता को भी उपनिषद कहा गया है। तो भगवद गीता सारे उपनिषदों का सार है, और भगवद गीता की तुलना किससे की गई है, एक गाय से की गई है। सर्वोपनिषदो गाओ और दोग्धा गोपाल नंदनः, और इस गाय का दूध निकालने वाले कौन है, उसका ट्रांसलेशन आप पढ़ते तो ये गीतोपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को क्या कर रहे हैं, धो रहे हैं, उसका दूध निकाल रहे एक प्रकार से। तो गाय हम रखते हैं तो गाय का सार क्या है, दूध है। तो उसी प्रकार से सारे वेद उपनिषद आदि का जो सार है वो ये भगवद गीता है, और भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, उसको धो रहे हैं, और उसको पान कौन कर रहा है, बछड़ा है। बछड़े की तुलना किससे की गई है, अर्जुन से की गई है। और ये जो केवल बछड़ा केवल अकेले ही गाय का दूध का पान नहीं करता है, गाय इतना प्रचुर मात्रा में दूध देती है कि बछड़ा भी पीता है तृप्त होकर, और बाकी लोगों के लिए भी दूध अवेलेबल होता है। तो उस प्रकार से शास्त्र कहते हैं, विशेष रूप से गीता महात्म्य में ये वर्णन आता है कि वास्तव में भगवद गीता का ये जो ज्ञान है ये अमृत तुल्य है, अमृत के समान है। इसी कारण से इस ज्ञान की सहायता से हम अपना जो असारमय जीवन है उसको किसमें बदल सकते हैं, सार में बदल सकते हैं। हर एक के जीवन आसार पड़ा हुआ है। हाँ, एक प्रकार से जैसे कोई खेती होती है, जमीन होती है, बंजर भूमि, जहाँ कुछ उगान उगता नहीं है, लेकिन अच्छी खासी भूमि हो तो वहाँ अच्छी फसल आ सकती है। तो उसी प्रकार से हम अपने जीवन को देखेंगे जो बिल्कुल ही दुखमय, सड़ामय, टेंशनमय, स्ट्रेसमय और उस बंजर भूमि के भांति है, जहां किसी भी प्रकार का प्रेम की जो भावना है नहीं है। तो ऐसे भगवद गीता की सहायता से हम अपना जो असारमय जीवन है उसको सारमय बना सकते हैं, ताकि हम अपना जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जैसे मैं शुरुआत में चर्चा कर रहा था कि हम सब लोग बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, और हमारी दौड़ किस चीज के लिए है? आनंद या सुख के लिए है। तो हम आज का जो विषय है वो यही है कि सुख की तलाश। किसकी तलाश? सुख की तलाश। तो एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास गया। वो साधु के पास जब गया बहुत परेशान था। जब हम अपने जीवन में परेशानी होती है, कष्ट होते हैं, तो हम कई प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, कई प्रकार के सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, लेकिन क्या होता है, फाइनली हम ढूंढते हैं किसी साधु को ढूंढते हैं कि वहां जाकर कुछ मुझे सुख या शांति या आनंद मिल सकता है। तो ऐसे व्यक्ति अपने घर से बड़ा परेशान था, ऑफिस से, समाज से, उसको लग रहा था कि मेरे जीवन में सुख या शांति कैसे आ सकती है। तो उस साधु के पास गया। साधु तो अपनी कुटिया में बैठा हुआ था, ये जाकर उसके पास बैठता है और उनको कहता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं बहुत त्रस्त हूँ, मुझे अपने जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो उन्होंने कहा, हाँ, तो साधु ने कहा यहाँ बैठो। जैसे उन्होंने कहा बैठो, तो अचानक वहां एक बटरफ्लाई आती है, क्या कहते हैं उसको, तितली। हाँ, तितली उड़ती हुई आती है और साधु के पास छोटा सा एक पौधा था, उस पौधे के ऊपर आके बैठती है तितली। तो साधु कहता है कि जाओ ये जो तितली है इसके पकड़ के लेके आओ। अभी वो व्यक्ति उठा। हाँ, सोचे तो बड़ा इजी काम है, हमारा जीवन में हम सब लोग इजी गोइंग लाइफ चाहते हैं, हर चीज हम सरलता से प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, भगवान भी चाहते हैं, तो कैसा चाहिए हमारे जीवन में भगवान? सरलता से। तो इस प्रकार से जब वो व्यक्ति कोई साधु ने भेजा, तो वो दाता है, दौड़ते दौड़ते वो तितली को पकड़ना चाहता है। तितली तो अभी थी यहाँ, तो उड़ती है उड़ती है उड़ती है उड़ती, पूरा आधा दिन बिताता है, लेकिन वो तितली उसके हाथ में नहीं आती। वो वापस दौड़ते हुए आता है साधु के पास और कहता है कि ये इजी टास्क नहीं था जो आपने मुझे दिया था, कुछ सरल टास्क बताओ ना। साधु कहता है ऐसे ही है हमारे जीवन में, ये सुख प्राप्त करना भी या आनंद प्राप्त करना भी इजी टास्क नहीं है, क्योंकि इस भौतिक सुख की ऐसी तुलना एक तितली से की गई है, हम जितना उसके पीछे भागेंगे वो उतना ही आगे भागता रहेगा या भागती रहेगी। तो ये भौतिक सुख या भौतिक आनंद इस संसार में ऐसे ही है, जो व्यक्ति जितना उसके पीछे पागल के भांति भागता है वो सुख वो आनंद उससे अत्यधिक दूर भागते रहता है। प्रभुपाद वो गधे का उदाहरण देते थे, मेरा फेवरेट एग्जांपल है। वो गधे के ऊपर प्रभुपाद कहते थे, उनका एक बुक है छोटी सी, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, उसमें भी ये जब सुख की चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि ये गधा था और एक मालिक था, उसके ऊपर बहुत सारा बोझ लाद देता था। तो बहुत सारा बोझा उस गधे के ऊपर डालता था, लेकिन जो मालिक है गधे के आगे एक छोटी सी छड़ी ऐसे टांगता था, और उसके आगे क्या टांग देता था, हरी हरी घास और एक गाजर। तो गधे को लगता था थोड़ा सा आगे जाऊंगा ना, हरी हरी घास मिलने वाली है, गाजर मिलने वाला है। तो लेकिन जितना आगे जाता है उतना ही वो देखता है कि वो गाजर आगे आगे चलती जा रही है और वो हरी हरी घास भी आगे आगे चलती जा रही है। तो इस प्रकार से साधु ने कहा भौतिक सुख का स्वभाव ऐसे है। उन्होंने कहा तुम यहाँ बैठो, तो बैठा तो थोड़ी देर में देखा वो तितली आती है उड़ के और उस व्यक्ति के कहाँ बैठती है, कंधे में आकर बैठती है। तो इसी प्रकार से हम इस संसार में सुख के पीछे या आनंद प्राप्ति के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन यदि हम गंभीरता से रुक जाते हैं, ध्यान से समझते हैं भगवान की शिक्षाओं को और उसके आधार पर चलने का प्रयास करते हैं और वो सुख वास्तव में हम ढूंढ रहे हैं, वो सुख कहाँ है? बाहर ये सुख नहीं है। तो जैसे कस्तूरी मृग है, कस्तूरी मृग एक हिरण है जो दौड़ते रहता है। किस चीज के लिए दौड़ता है? एक सुगंध जो उसको इतनी लुभावनी, आनंदमय या प्रेममयी जो उसको आकर्षित करती है उस हिरण को, तो उसको प्राप्त करने के लिए वो हिरण दौड़ती है कई किलोमीटर और फाइनली उसको ढूंढते ढूंढते एक दिन मर जाती है दौड़ दौड़ के। हाँ, लेकिन उस मूर्ख हिरण को पता नहीं है कि वो जो कस्तूरी है वो कहाँ छुपी हुई है? उसके नाभि में छुपी हुई है। तो उसीलिए अज्ञानता के कारण हमारे दुखों का मूल जड़ क्या है? इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग। प्रभुपाद कहते हैं अज्ञानता क्या है? हमारे कष्टों का, दुखों का मूल कारण है। तो भगवद गीता ये ऐसी टॉर्च लाइट है जो हमें अज्ञान के अंधकार से क्या करती है? दूर कर देती है। इसलिए हम जब प्रवचन शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या उच्चारण करते हैं? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। एक होता है अंधकार और दूसरा होता है तिमिर अंधकार, मतलब बहुत डार्क अंधकार। तो भगवद गीता ऐसी टॉर्च लाइट है जो अज्ञान के अंधकार से हमें दूर ले जा सकती है, प्रकाश में ले जा सकती है। इसी कारण से जो ये जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति के हृदय में लालसा होनी चाहिए। और ये शास्त्र क्या है? केवल प्रश्न और उत्तर है। तो कई बार हमें लगता है कि ये जो शास्त्र है ये इनको पढ़ना, इनको समझना हमारे बस की बात नहीं है। लोग भगवद गीता को ऊपर से देख के रख देते हैं, डरते रहते हैं और प्रयास भी करते तो समझ में नहीं आता। लेकिन समझने के लिए सरलतम उपाय है, हम जब भक्तों के संग में आते हैं तो समझा जा सकता है। तो ज्ञान प्राप्त किया जाता है कई सारी विधियों के द्वारा, लेकिन शास्त्र कहते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीन प्रमुख विधियां हैं जिनको आप जानते हैं। प्रमुख विधि क्या? एक विधि क्या है? एक विधि है ज्ञान प्राप्त करने का, एक है जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है ज्ञान हम प्राप्त करते हैं अपने इंद्रियों के माध्यम से, आंखों से, कानों से, स्पर्श से, जो भी नॉलेज हमारे पास है उसके आधार पर। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब मैं जो आंखों से देख रहा हूं वो सही है, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण जिसे कहते हैं इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो वास्तव में पूर्ण और परफेक्ट ज्ञान नहीं है, उसमें भी क्या है? अपूर्णता है। क्यों? क्योंकि जो ये ज्ञान है, ये जो इंद्रिया है, उनमें चार दोष है हर एक व्यक्ति में, जिसके कारण ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उससे प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वो उचित नहीं है या परफेक्ट नहीं है या पूर्ण नहीं है। हम तो ऐसे पूर्ण ज्ञान की तलाश में हैं। तो क्या कारण है प्रत्यक्ष प्रमाण फेल है? क्योंकि हम सबके अंदर इसमें चार दोष है और पहला दोष है अपूर्ण इंद्रिया। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया वाला जो ज्ञान है उसमें पहला दोष क्या है? अपूर्ण इंद्रिया। इन इंद्रियों के द्वारा हम पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। मैं अपने आईलिड्स को भी नहीं देख सकता, मुझे क्या चाहिए? शीशा चाहिए। हाँ, मैं दीवार के उस पार नहीं देख सकता। तो इस प्रकार से हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। और दूसरा दोष क्या है? धोखा देने की प्रवृत्ति या धोखा खाने की क्या है हमें? प्रवृत्ति है। इसी कारण से वो ज्ञान पूर्ण नहीं है। और तीसरी चीज शास्त्र कहते हैं भ्रमित होना। हम भ्रमित हो जाते हैं जिसके कारण हम वो ज्ञान पूर्ण रूप से समझ या अनुभव नहीं कर सकते हैं। और चौथी चीज क्या है? गलतियां करना। यदि हम सोचते हैं कि नहीं मुझे विश्वास नहीं, जो देखूंगा वही सच है, तो ये अनुचित है। तो जो चौथा दोष है गलतियां करना, ये तो बड़े बड़े लोगों के साथ है। महात्मा गांधी को कहा कि उस प्रार्थना जब हो रही है वहां मत जाओ, उन्होंने कहा जाऊंगा, गलती कर ली, क्या हुआ? मारे गए। जो न्यूटन थे उनके पास एक बिल्ली थी, तो वो जो बिल्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया तो न्यूटन ने सोचा जब बिल्ली वो रूम में आती है, एक एक बॉक्स आता उसको उसमें से बाहर निकलने के लिए, न्यूटन ने सोचा कि दो डोर्स बनाने पड़ेंगे, दो राउंड्स बनाने पड़ेंगे, दो छेद बनाने पड़ेंगे, एक किसके लिए, बड़ा छेद बिल्ली के लिए और छोटा छेद उस बिल्ली के बच्चे के लिए। लेकिन जब बच्चा जन्म लिया और एक दिन उन्होंने देखा, इन्होंने दो छेद बना दिए, लेकिन एक दिन देखा कि वो बिल्ली जिस बड़े छेद से आई उसी से क्या आई, वो छोटा सा बच्चा भी उसी छेद से बाहर आया। तो वो समझ गए कि ये तो मेरी गलती है कि दूसरी छेद की आवश्यकता नहीं थी, एक ही छेद से ये दोनों आ सकते थे। तो इतने महान महान लोग भी क्या कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो पूर्ण नहीं है। और ज्ञान प्राप्ति का जो दूसरा विधि है, ज्ञान प्राप्ति की जो दूसरी विधि है जिसको कहते हैं अनुमान प्रमाण, मतलब अनुमान लगाना। जैसे कोई डोर दरवाजा बंद है किसी रूम का और अंदर बहुत नृत्य आदि की आवाज आ रही है, बहुत इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, तो किसी को लगेगा बाहर से अंदर कुछ लोग, बहुत सारे लोग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और वहां क्या हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन दरवाजा खोल के देखते तो क्या चल रहा होता है अंदर, टेलीविजन चल रही है। तो मतलब ज्ञान हम हासिल करते हैं अनुमान के आधार पर। तो जो अनुमान है, तर्क है, वो भी ज्ञान प्राप्ति के लिए पूर्ण नहीं है, काफी नहीं है। लेकिन शास्त्र फिर कहते तीसरी चीज जिसको कहा जाता है क्या है, शब्द प्रमाण। कौन सा प्रमाण चाहिए, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण वो पूर्ण प्रमाण है। जो ज्ञान हम शब्द प्रमाण के माध्यम से स्वीकार करते या प्राप्त करते हैं वो परफेक्ट है और पूर्ण है। जिस प्रकार से आप रेलवे के चार्ट्स लगते हैं ना, टाइम टेबल्स लगते हैं, तो वो ऑथेंटिक है या नहीं है, हाँ वो ऑथोराइज है, हाँ तो जो चार्ट से उसी समय ट्रेन जाने वाली है, या जो इंक्वायरी काउंटर में कोई व्यक्ति बैठा रहता है उसके पास जाकर हम पूछते हैं ट्रेन कितने घंटे लेट है, तो वो बोलता है कि इतने इतने घंटे लेट है, तो वो क्या है, शब्द प्रमाण है। या मुझे जानना हो कि मेरे पिता कौन है तो मुझे किसे जाकर पूछना होगा, अपनी माँ से पूछना होगा, हे माता बताओ मेरे पिता कौन है, और वो वास्तव में क्या है, पूर्ण ज्ञान है। हाँ तो इस संसार में चाहे भौतिक ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसमें भी किस चीज की आवश्यकता है, फेथ की। किस चीज की, फेथ, श्रद्धा। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की बात आती है तो हमारा फेथ डगमगाता है। हराम शास्त्रों को कहते नहीं नहीं, ये जो भगवत गीता आदि है नहीं तो कपोल कल्पनाएं हैं, हाँ उसमें हमारा विश्वास नहीं है। लेकिन वास्तव में चाहे भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, इन दोनों ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें श्रद्धा की आवश्यकता है। जब हम नाई के पास जाते हैं ना बाल कटवाने, हाँ तो नाई के हाथ में क्या होता है, वसुरा होता है, और पूरा व्यक्ति आंखें बंद करके बैठा हुआ है, इतना फेथ कि ये गला नहीं काटेगा मेरा, क्या नहीं काटेगा, हाँ सोचो कितना विश्वास, बैठा हुआ है आंखें बंद करके कपड़ा ओढ़ के वहां, और वो ब्लेड इधर से उधर घुमा रहा है, लेकिन इतना विश्वास है कि ये मेरा गला काटने वाला नहीं है। हाँ तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस संसार में भी, या सोचो अभी पानी मुझे पीना है तो मैं चेक थोड़ी करूंगा कि ये मिनरल वाटर ही है, शुद्ध पानी है, क्या करूंगा, फेथ है, किस ब्रांड पर फेथ है ना, कि किनले है, एक्वाफिना है, रॉयल ब्लू है ना, हम सीधा उसका ढक्कन खोलते हैं और सीधा क्या करते हैं, पी लेते हैं। तो फेथ नीड है, आवश्यक है आध्यात्मिक ज्ञान को या भौतिक ज्ञान को अर्जन करने के लिए। इवन इस संसार में देखो कितने सारे प्लेन क्रैश होते रहते हैं, लेकिन जितने भी लोग, अभी संख्या कम थोड़ी हो गई है फ्लाइट से जाने वालों की, अभी तो इतने फ्लाइट्स आ गए, कई कंपनीज आ गई, लोग भी बढ़ गए, ट्रैवलर्स, हाँ तो लेकिन व्यक्ति बढ़ता है तो ये फेथ होता है कि मैं जिस फ्लाइट में बैठा हूँ वो क्रैश होने वाला नहीं है, इतना फेथ। तो जब अध्यात्म की बात आती है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फेथ रखना होगा, हाँ तब आप देखिए। तो श्रद्धा से ही या फेथ या विश्वास से ही हाँ ये शुरू होता है। इसलिए भगवद गीता क्या है, कपोल कल्पना नहीं है, शास्त्र क्या है, जो हमारे जीवन में घटित होती है चीजें, हाँ, उनके बारे में रियलिटी को प्रस्तुत करता है और हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको हमें सिखाता है। तो भगवद गीता का जो ज्ञान है ये वास्तव में शब्द प्रमाण है और इस भगवद गीता के ज्ञान को हमें समझना चाहिए। ये कोई कपोल कल्पना होती तो ये भगवद गीता विश्व के कोने कोने में लोग इसको पढ़ते नहीं, इतना प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये प्रभुपाद की जो भगवद गीता है, भगवद गीता यथारूप एज इट इज, ये इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, मोर देन 80 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में है, चाहे चाइना हो, जहां मर्जी आप जाओ वहां लोग इसको पढ़ रहे हैं और अपना जीवन भगवद गीता के आधार में या शिक्षाओं पर क्या कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र कहते कि अध्यात्म में तीन हाईवेज हैं। कितने हाईवेज हैं? तीन हाईवे हैं। इसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में प्रस्थान त्रय। क्या कहते हैं? आपने देखा ना रेलवेज या एयरपोर्ट में जाते हैं, एक होता है आगमन, दूसरा होता है प्रस्थान। सुना है ये दो शब्द? प्रस्थान होता है कि नहीं, अराइवल एंड डिपार्चर, हम हिंदी में जाते हैं। एक तो आगमन तो हमारा हो गया है इस संसार में, हम सब ने क्या कर दिया, यहाँ लैंड, हम सबका फ्लाइट इस भौतिक जगत में लैंड हो गया है, हम सारे अराइवल हो गया है। अभी तैयारी किसकी करनी है? डिपार्चर, प्रस्थान। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका प्रस्थान इस जगत से नहीं हुआ? आपके पिता, आपके रिलेटिव्स या बड़े बड़े फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, नेता, अभिनेता, हाँ, नेत्री, अभिनेत्री, ऐसे कोई है जो यहाँ हमेशा बैठे हैं? नहीं, हर एक का अराइवल हो गया है और अभी सब लोग किसकी तैयारी में है? प्रस्थान, डिपार्चर। तो प्रस्थान भी उचित होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहाँ भी प्रस्थान किया आपने, आपको मुंबई जाना है और आप कहाँ किसी गांव के किसी कोने में जाके पहुंच गए, जंगल में जाकर जहां शेर के भोजन बन गए। तो प्रस्थान भी क्या होना चाहिए? उचित होना चाहिए। तो ये प्रस्थान उचित होने के लिए हमें तीन चीजें सहायता करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक तीन प्रस्थान बोले गए हैं। एक प्रस्थान है जिसको कहते हैं श्रुति प्रस्थान। कौन सा प्रस्थान? श्रुति, श्रुति मीन्स सुनना, श्रुति प्रस्थान जिसको कहते हैं दूसरी भाषा में उपदेश प्रस्थान। तो श्रुति का मतलब है जहां उपनिषद, उपनिषदों का ज्ञान गुरु के पास जाकर प्राप्त करना या उनके निकट बैठकर समझना, उसको श्रुति प्रस्थान कहते हैं। और प्रमुख रूप से उपनिषदों का अध्ययन जिसको कहते हैं। और दूसरा प्रस्थान क्या है? न्याय प्रस्थान। न्याय प्रस्थान का मतलब है जिसमें न्याय, युक्ति आदि, लॉजिक वगैरह निहित है और विशेष रूप से जो ब्रह्म सूत्र है या वेदांत सूत्र नामक जो ग्रंथ है उसका अध्ययन करना। तो वेदांत सूत्र क्या है या ब्रह्म सूत्र क्या है कि बहुत सारा वैदिक नॉलेज वो छोटे से सूत्रों में दिया गया है। जैसे एक सूत्र क्या है, एक सूत्र है, सर्वप्रथम सूत्र है जन्मादर्शयतः, कि सारे चीजों के उगम स्थान भगवान है। दूसरा सूत्र क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिस व्यक्ति के पास मनुष्य जीवन मिला है उस व्यक्ति ने जिज्ञासा करनी चाहिए, उस व्यक्ति ने इंक्वायरी करनी चाहिए। तो ये भी एक क्या है, सूत्र है। तो ऐसे 500 से अधिक सूत्र हैं जिनको एक सर्वसाधारण व्यक्ति को समझना असंभव है। इसी कारण से क्या किया भगवान ने, इन सारे उपनिषद वेद आदि को चरणिंग किया। जैसे आप दूध या दही का मक्खन मंथन करते हैं, चरणिंग करते हैं, तो क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। तो उसी प्रकार से सारे इन शास्त्रों का मंथन करने के बाद भगवान वास्तव में भगवद गीता प्रदान करते हैं, जिसको कहते हैं तीसरा प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान। कौन सा प्रस्थान? स्मृति। स्मृति मतलब याद रखा हुआ, रिमेम्बरेंस या रिमेम्बरिंग। तो भगवद गीता ये स्मृति प्रस्थान है और जिसको साधन प्रस्थान भी कहते हैं। यह बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्स्ट है। जो भी व्यक्ति इस संसार से डिपार्चर करना चाहता है उचित स्थान में जाने के लिए उसके लिए बेस्ट क्या है, भगवद गीता है। तो हम सबको डिपार्चर करना ही करना है, लेकिन किसकी हेल्प से, भगवद गीता की सहायता से। इसी कारण से भगवान इतना महत्व देते हैं। हाँ, गीता महात्म्य में वर्णन आता है, पेज नंबर 26 भगवद गीता में आप देखिए, भगवद गीता हाँ ये 26 नंबर पेज में वर्णन आया है, जहां कृष्ण कहते हैं, ऊपर से देखेंगे आप 4 नंबर श्लोक, जहां भगवान कहते हैं गीता सुगीत कर्तव्या किमान्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभश मुख पद्म द्विनिश्रितः। क्योंकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, या स्वयं पद्मनाभश, हाँ यह शब्द यूज हुआ है, मिला सबको ये श्लोक 26 नंबर पेज में तीसरा श्लोक। क्योंकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, उसे केवल भगवद गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्य में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। किसने प्रवचन किया? भगवान ने। इसी कारण से कहते हैं कि मान्य शास्त्र विस्तरे, कोई और शास्त्र को या ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए शास्त्र, ये जो शब्द है संस्कृत में, जो वर्ब होता है रूट, जो शस धातु है, उससे कई शब्द बनते हैं। हर शब्द का मूल संस्कृत में धातु होता है या शब्द होता है। शस धातु से शस्त्र शब्द बना है, शास्त्र शब्द बना है और शिष्य शब्द बना है। तो जब कोई व्यक्ति कहते हैं कि ये जो ग्रंथ आदि है इनमें तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से भरा पड़ा रहता है, हमें ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करना है, तो आपको मैं प्रश्न पूछता हूं, यदि आप जाते हो रेड लाइट्स में, आपकी कार रुक जाती है, तो ये रेड लाइट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमें क्यों फॉलो करने चाहिए, बताइए। एक एक का सेफ्टी के लिए और दुर्घटना से बचने के लिए और चलान, सबसे प्रॉब्लम बड़ा तो क्या है, चलान है। हाँ, माता जी ने सही आंसर दिया। ये सारी चीजें तो अलग ही हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने का मेन उद्देश्य क्या है, कि हम अपना जो लक्ष्य है या गंतव्य है वहां पहुंचे, ये नहीं कि वहां बहुत मैस हो जाएगा या फिर दुर्घटना से बचने के लिए, ये चीजें तो है ही, लेकिन ये सेकेंडरी है। लेकिन प्राइमरी प्रमुख क्या है, क्यों फॉलो करना है, क्योंकि हम अपना जो लक्ष्य है या गंतव्य है वहां कैसे पहुंचेंगे, उचित रूप से पहुंच सकते हैं, या गंतव्य में पहुंचने के लिए हमें इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो इसी कारण से जो भगवद गीता है, क्योंकि भगवान ने देखा कलियुगा के जीव थोड़े से मंद बुद्धि के हैं, उनको सीधी सीधी चीज बताओ तो समझ में नहीं आती, उनके साथ मिर्च मसाला सब कुछ लगाओ तो तब क्या होता है, समझ में आता है। जैसे होता है ना, कुछ कड़वी दवा होती है तो बच्चा खाता नहीं है, तो माता क्या करते है, उसके साथ कुछ कोटिंग बनाती है या फिर शुगर के साथ खिलाती है तो उसको खा लेता है। तो वैसे ही भगवान ये भगवद गीता हमें महाभारत का जो ग्रंथ है उसमें प्रदान करते हैं, क्योंकि महाभारत में क्या है, फैमिली अफेयर है, रोमांच है, लड़ाई है, झगड़े है और कितनी सारी चीजें हैं। जब ये महाभारत को देखता है पढ़ता है व्यक्ति तो बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है, लेकिन उसके अंदर क्या छुपा के रखा है भगवान ने, भगवद गीता रखी है। तो महाभारत की तुलना अंगूठी से की गई है, किससे की गई है, अंगूठी से, लेकिन अंगूठी के ऊपर भी एक हीरा है, मोती है, जिससे वो अंगूठी क्या होती है और सुंदर लगती है। तो उसी प्रकार से महाभारत वो अंगूठी है, लेकिन उसके ऊपर ये भगवत गीता क्या है, वो हीरा है, रत्न है, मोती है। तो ये भगवत गीता महाभारत में हमें प्राप्त होती है। और महाभारत तो कई उसमें पर्व है, 18 या 19 पर्व है, कई सारे पर्व है, आदि पर्व है, सभा पर्व है, कर्ण पर्व है, ऐसे बहुत सारे पर्व है। लेकिन उसमें एक पर्व है, एक चैप्टर है, जिसको कहते हैं भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में कई सारे अध्याय हैं, उन अध्यायों के बीच में ये जो भगवद गीता हमें प्राप्त होती है, अध्याय 25 से लेकर अध्याय 42 तक, हाँ, ये भगवद गीता हमें भीष्म पर्व में प्राप्त होती है। तो इसलिए हम ये जो भगवद गीता है, जिसको उचित रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवद गीता के माध्यम से हम एक अपना जो खोया हुआ रत्न है, हाँ, उसकी तलाश में है। आज हमारा विषय क्या है, क्या विषय है हमारा, जोर से बोलिए, सुख की तलाश या सुख की खोज। तो मतलब खोज या तलाश उसकी की जाती है जो क्या हो गया है, गुम हो गया है। होता है ना टेलीविजन या ऐसे रास्ते में लगा होता है, गुमशुदा। इस व्यक्ति को आपने देखा हो तो इस कांटेक्ट में प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। तो वैसे ही हम सब ने अपने जीवन से एक चीज को खो दिया है, एक चीज हमसे गुम हो गई है, और वो क्या है, सुख। और सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सूखा जा रहा है, व्यक्ति क्या हो गया है, सूख गया है। क्या ढूंढ रहा है, लेकिन हाँ देखो, बचपन से लेके बूढ़ा पाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, पूरा सूख जाता है कि नहीं जाता, शरीर में मांस भी नहीं बचता, केवल क्या बचती है, हड्डियां। काउंट भी कर सकते हो आप, मतलब सुख की तलाश में व्यक्ति पूरा सूख जाता है, लेकिन सुख नाम की वस्तु उसके हाथ में आती नहीं है। इसलिए सुख की सही तलाश करनी है, हाँ, तो उसके लिए ज्ञान चाहिए। और कौन सा ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान। क्योंकि भौतिक ज्ञान से हम सुख प्राप्त करते हैं, तो वो जो सुख है वो हमें मिलता है, लेकिन हाँ स्थाई सुख नहीं होता। सुख दो प्रकार के हैं, एक है स्थाई सुख और दूसरा है अस्थाई सुख। हाँ, स्थाई मीन्स परमानेंट हैप्पीनेस, और दूसरा है टेम्पररी हैप्पीनेस, जो अस्थाई सुख है। तो हम अपने जीवन में देखेंगे कि जितना भी हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा जो सुख हमें मिलता है वो कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। फिर से हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और केवल 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 हम चिंतित रहते हैं, मनन करते रहते, कब सुख मिलेगा, कैसे सुखी हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। इसका मतलब बारंबार किसी चीज का चिंतन करना, मतलब वो वस्तु हमारे पास नहीं है, उस वस्तु को हम वास्तव में ढूंढ रहे हैं। तो इस आने वाले कुछ समय में हम सीखेंगे कि ये क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हमें आनंद नहीं मिल रहा है, या और वर्तमान में हम जिसको आनंद समझते हैं वो एग्जैक्टली क्या है। तो ये जो भौतिक सुख हमें या भौतिक ज्ञान हमें शाश्वत सुख नहीं प्रदान करता। जैसे सुख मतलब डायरेक्ट सुख हम अनुभव करते कैसे, रेस्टोरेंट्स में जाना, और किस चीज को संतुष्ट करना, जिंद्रियों को, जिवा, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख एवं एवचि। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि हम अपने इंद्रियों के माध्यम से वास्तव में कई प्रकार का सुख अनुभव करना चाहते हैं। तो डायरेक्ट सुख है और एक दूसरा है इनडायरेक्ट सुख। डायरेक्ट सुख है कि कोई व्यक्ति सिनेमा हॉल में जा रहा है, वहां जाके सुख अनुभव करता है, कोई व्यक्ति हिल स्टेशन में घूम रहा है, या फिर कोई व्यक्ति बड़े बड़े मॉल्स आदि में जा रहा है। तो इस प्रकार से हम सुख अनुभव करते हैं, डायरेक्ट सुख, लेकिन वो सुख वास्तव में इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो वास्तव में हमारे किस चीज का कारण बनता है,
दुख का कारण बनता है। इसलिए भगवान पांचवे अध्याय के 22वें श्लोक में, प्रभु जी ने निकाला उस श्लोक को, पांचवे अध्याय का जो 22वां श्लोक है जिसमें वर्णन करते हैं, पेज नंबर 197 में भगवान कहते हैं, मिला सबको 197, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते अद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। तो भगवान या बुद्धिमान या चतुर व्यक्ति के लक्षण को बता रहे हैं। भगवान कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से क्या है, उत्पन्न है। भौतिक इंद्रिया को कितनी है हमारे पास, वैसे 10 इंद्रिया और एक मन है, 11 है इनका समुच्चय। 5 तो ज्ञान इंद्रिया है और 5 कर्म इंद्रिया है और एक मन है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो भौतिक सुख इंद्रियों के संसर्ग से हमें प्राप्त होता है, जिह्वा से, कान, जिह्वा से हम क्या करते हैं, स्वाद, नाक से सूंघते हैं, आंख से देखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, हाँ, तो इस प्रकार से हम इंद्रियों के माध्यम से सुख की अनुभूति करते हैं। तो भगवान कहते हैं भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, हाँ, हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो ये भौतिक सुख की शुरुआत है और उसका एंड है। आपको रेस्टोरेंट में बिठाया जाए और कितना खाओगे, हाँ, कितने गोलगप्पे खाएगा व्यक्ति, हाँ, 50 खा सकता है अधिक से अधिक। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जो भौतिक सुख है जिसका एंड निश्चित है, और इनडायरेक्ट सुख क्या है, जब व्यक्ति कोई बीमार है और वो डॉक्टर के पास जाके जाता है, ठीक हो जाता है, तो उसको क्या मिलता है, एक सुख मिलता है। या व्यक्ति गर्मी है तो एसी ऑन करके बैठता है, या कुछ चलना हो तो हम साइकिल रिक्शा को पकड़ते हैं तो उससे थोड़ा सुख मिलता है। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति के जो कार्य है अपने जीवन में, वो सारे कार्यों का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना है। कोई व्यक्ति टॉयलेट भी जा रहा है तो किस लिए जा रहा है, सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए, इसलिए त्यागा शांति अनंतरम, गीता में एक श्लोक आता है, त्याग में क्या है, शांति है। तो व्यक्ति के हर कार्यकलाप सुख प्राप्ति के लिए है। कोई व्यक्ति विवाह के बंधन में बंधना चाहता है तो किस लिए है? फिर परेशानों के तलाक लेना चाहता है तो किसके लिए है? देखो, पहले सुख के लिए प्रयास किया, फिर भी जो दूसरा प्रयास किस चीज के लिए है, सुख के लिए है। कोई आत्महत्या करना चाहता है किस चीज के लिए, मतलब हर जो प्रयास है लाइफ का वो केवल हम सुख की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा ये जो भौतिक ज्ञान से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो स्थायी नहीं है, वो कैसे है, अस्थायी है। इसलिए हमें परमानेंट सुख चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, भगवत गीता का ये जो ज्ञान है उसको समझकर सुखी होने का प्रयास करना होगा। मुझे लग रहा है समय हो गया है, तो मैं आधा ही कवर कर पाया हूँ, तो हम कल ट्राई करेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड में बढ़ा दूंगा, हाँ, तो हम कल फिर से डिस्कस करेंगे इस रिमेनिंग कन्वर्सेशन को, और कल एक नया टॉपिक भी साथ में हम इंसर्ट करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।